नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रायल हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई ईडी मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मामले को रखा और कहा कि आवेदक विधानसभा का सदस्य है, अभी चुनाव का मौसम चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसे आने दीजिए और जजों को फाइल पढ़ने दीजिए, अगर आपके कागजात 12:30 बजे तक ठीक होंगे तो वो कल तक हमारे पास होंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 30 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान कथित शराब घोटाला मामले में आप नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ये दूसरी बार था जब उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। बता दें कि कुछ समय पहले ही केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में जज कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि सिसोदिया ही घोटाले के किंग पिन हैं, इनको जमानत देने से ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सबूतों और गवाहों पर असर डाल सकते हैं। आखिर ये शराब घोटाला क्या था जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच गए? तो बताते हैं, 17 नवंबर 2021 को राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति को लागू कर दिया था। इस नई नीति के तहत दिल्ली को कुल 32 जोन में बांटा गया और कहा गया कि आप हर जोन में 27 शराब की दुकानें खोल सकते हैं। अगर इसी आंकड़े के हिसाब से टोटल किया जाए तो पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खुलनी थी। ये एक बड़ा बदलाव होने वाला था, जो कि शराब की दुकानें खुलनी थी वो निजी सेक्टर की थी, इसमें सरकार का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एलजी के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग ने अपने 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दरअसल ये सभी कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत उनकी नियुक्ति की थी। आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आयोग में केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं और DCW को अनुबंध पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग विभाग के एडिशनल डायरेक्टर की ओर से जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों को पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया और ना ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लिए अनुमति ली गई। बता दें कि ये कार्रवाई फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार केसरगंज सीट से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट काट सकती है, उनकी जगह उनके बेटे को मौका दिया जा सकता है। अभी तक इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद को देखते हुए बीजेपी सेफ खेलेगी और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण को चुनावी मैदान में उतार देगी। जानकारी के लिए बता दें कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे रेसलरों ने ब्रजभूषण के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी और जोर देकर कहा था कि बीजेपी नेता और तब के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण ने महिला रेसलरों के साथ यौन शोषण किया। उस विवाद को लेकर ही कई रेसलरों ने अपने मेडल वापस किए थे, कई दिनों तक धरना भी दिया। विपक्ष ने भी मांग की थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बीजेपी ने कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन हो सकता है कि केसरगंज से उनका टिकट कट जाए, यानी कि उनका सियासी करियर नीचे की ओर जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन के लिए बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने 6 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बसपा की इस लिस्ट में केसरगंज, गोंडा, संत कबीर नगर, बाराबंकी, आजमगढ़ सीट से प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी ने केसरगंज लोकसभा सीट से ब्राह्मण कार्ड खेला है और नरेंद्र पांडे को यहां से टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने गोंडा लोकसभा सीट से सौरभ कुमार मिश्रा को चुनावी दंगल में उतारा है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा को कैंडिडेट घोषित किया गया है। केसरगंज से नरेंद्र पांडे हाथी पर सवार होते हुए नजर आएंगे। वहीं संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को मायावती ने टिकट दिया है। बाराबंकी सुरक्षित सीट से शिव कुमार दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ से बसपा ने उम्मीदवार बदल दिया है, यहां से मशहूर अहमद को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ पूर्वी सीट से उपचुनाव में पार्टी ने आलोक कुशवाहा को टिकट दिया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।